हमारे यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ एक खातून के साथ रेप का, और मुजरिमीन जो हैं उनको अब कटहरे में लाया जा रहा है। अल्लाह करे जल्द इंसाफ हो उनके साथ। कुछ बहसें ज़िमन में पैदा हुई, मैं चाहता हूँ उस पर आपकी भी राय सामने आए। हमारे आम तौर पर जब इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं, सोसाइटी का एक उमूमी रद्द अमल, बिलखसूस वो लोग जो एक मज़हबी शिनाख्त रखते हैं या जिनके अंदर एक रिवायती, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तानी माहौल का असर होता है, वो एक बात कहते हैं, और किसी हद तक हमारे जो लीडर हैं या हमारे जो अफसरान हैं उनकी ज़ुबान से भी सामने आ जाता है, बल्कि उसकी एक मिसाल भी आई सामने। वो कहते हैं कि रेप बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इससे लोगों को पकड़ के इबरतनाक सज़ा भी देनी चाहिए, लेकिन इसके जो मुहर्रिकात हैं उनमें एक बुनियादी मुहर्रक जो है वो बेहयाई का है, औरतों का इस तरह आज़ादी से बाहर निकलने का है। तो ये काम अगर आप रोकेंगे, ड्रामे हमारे यहाँ टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, इसकी वजह से वो जिनसी तहरीक पैदा होती है और लोग फिर इस आबरू बाख्तगी पर उतर आते हैं। तो ये जो एक रेप का या इस्मत दरी का पस मंज़र या इसका इसकी एक वजह बयान की जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं?
मेरे नज़दीक देखिए, इसमें हर तबके से कुछ मुख्तलिफ तवक्कुआत होती हैं। लोग अगर हकूमत में हैं, नज़्म व नस्क चला रहे हैं, उनके पास ताकत है, तो उनका ये काम नहीं है कि वो ये बातें कहें। उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि जो माशरा उनके सपुर्द किया गया है वो उसमें अमन कायम करें। मुजरमों की गोशमाली करना, उनका पीछा करना, ऐसी हिफाजत फराहम करना कि लोग बग़ैर किसी तरद्दुद के सुबह शाम बाहर निकल सकें, उनकी ज़िम्मेदारी ये है। उन्हें ना इस तरह के आज़ार पेश करने चाहिए, ना इस मौके पर ऐसी बातें करनी चाहिए। सर जोड़ के हमेशा बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ वो उन्हें कैसे अदा करें। एक दूसरा पहलू वो है जिसमें हुक्मरान भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, वो ये है कि बैसियत मजमूई ये देखा जाए और इसकी बड़ी साइंटिफिक तरीके से तहकीक करते रहना चाहिए कि किसी माशरे में क्या चीज़ें जुर्म के मुहर्रिकात बनती हैं। ये बड़ी सादगी की बात है कि आप ये कह दें कि अच्छा फलाने लिबास ये पहना हुआ था, नहीं, जुर्म के मुहर्रिकात का इसके बहुत अंदर उतर कर जायज़ा लेना चाहिए। उसके पीछे ताकत क्या किरदार अदा करती है, उसके पीछे तरबियत क्या किरदार अदा करती है, उसके पीछे मजमूई माहौल का क्या किरदार है, हमारे तालीमी निज़ाम में क्या खामियां हैं जिनको हमें मिलकर दूर करना चाहिए, हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर देहात की माशरत है उसमें क्या मुहर्रिकात जुर्म का बायस बन जाते हैं, जागीरदारी निज़ाम इसमें क्या किरदार अदा करता है। तो एक अच्छी सोसाइटी या अच्छी माशरत में हुक्मरानों का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो अपने लोगों की मजालिस मुनक़द कर लें, एक तकरीर फरमा दें, एक अफसर का तकरर कर दें। अगर आप आज के दौर में हुकूमत करना चाहते हैं तो आपका काम यह है कि आप हर वक्त इस बात का जायज़ा लें। यानी अगर पुलिस का महकमा भी कायम किया गया है तो ज़िम्मेदारी बेशक उसकी यही है कि वो अमन व अमान कायम करने के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल करे, लेकिन कानूनी ज़राए से दुनिया में कभी जुर्म का खात्मा नहीं हुआ। खात्मे की बात ना कीजिए, कम करने ही में इंसान कामयाब होता है, ये हमेशा इन तमाम अवामिल का जायज़ा लेने से होता है। अच्छा, जदीद ज़राए कितने इस्तेमाल किए गए हैं लोगों को तहफ़ फराहम करने के लिए? आपने जो आजकल के ज़माने में अल्लाह ताला ने इसबाब पैदा किए उनको कहाँ तक इस्तेमाल किया है? कहाँ कहाँ आपसे किसी चीज़ पर कबल अज़ वक्त इकदाम करने में कोताही हुई है? ये तमाम चीज़ें ऐसे महकमे होने चाहिए, ऐसी मजालिस होनी चाहिए, ऐसे थिंक टैंक होने चाहिए जिनमें ज़ेर बहस आए, क्योंकि रियासत में हुकूमत का नज़म कायम किस लिए किया जाता है? अगर कोई आदमी ये कहे कि अव्वलीन मकसद क्या है, तो अमन अमान कायम करना, लोगों को तहफ़ फराहम करना, यानी उनकी जान माल आबरू को हिफाजत हासिल हो। मैं कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुकूमत तो असल में अपना जवाज़ ही इससे पैदा करती है, वरना भाई हमें क्या मुसीबत है कि हम अपने अंदर से किसी शख्स को अपना हाकिम बना के बैठ जाएँ? ये जो कुछ भी हम टैक्स देते हैं या एक हुकूमत कायम करने की सही करते हैं या हुक्मरानों की बरतरी को मानते हैं, ये कांस्टेबल को ये हक देते हैं कि वो हमें खड़ा कर दे जहाँ पे चाहे, ये इसलिए ताकि अमन कायम हो, लोगों की इज़्ज़त की हिफाजत हो, उनके माल की हिफाजत हो, उनकी जान की हिफाजत हो, इसी मकसद के लिए करते हैं ना। तो ये जान की हिफाजत, आबरू की हिफाजत, ये महज लेक्चर देने से नहीं होगी, इसके लिए आपको हर वक्त अपनी सोसाइटी को समझने का अमल करना चाहिए। ये तो हुक्मरानों का भी काम है और इसी तरीके से रियासत के तमाम इदारों को इसमें अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करनी चाहिए। अदलिया देखे कि वो इस मामले में जो किरदार अदा करती है उसमें क्या खामियाँ हैं। पुलिस देखे कि उसका अमूमी रवैया क्या होता है। यानी यहाँ से बात नहीं शुरू होनी चाहिए कि आपने मारने के लिए किसी जाना है, किसी को जाना है या पकड़ने के लिए जाना है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे यहाँ इस मौक़ों पर गुफ्तगू होती है, अब इसको लटका दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये तो बिल्कुल एक इंतहाई अमल है, ज़रूर सजा दें और इबरतनाक भी दें, लेकिन सज़ा से बात शुरू नहीं होती। जुर्म कहाँ से पैदा हो रहा है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, लोगों के अंदर ये सारी चीज़ क्यों पैदा हो रही है, इसके असबाब को देखना। इसके असबाब को देख के बाद एक और चीज़ सामने आती है, वो ये है कि असबाब का जब आप जायज़ा लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि लोगों को आपने उनकी आज़ादियों से महरूम कर देना है। नहीं, उनकी आज़ादी बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ी कदर है, उसका लिहाज रखते हुए आपने जरायम को ख़त्म करने की सही करनी है। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ, जिसमें मस्जिद में, मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ने के लिए आती हुई एक खातून को रेप कर लिया गया। ये वाक़या बयान हुआ है ना रवायतों में। उस मौके पर देखना चाहिए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मुजरिम की तरफ था या औरत की तरफ था। तो मज़हबी लोगों को भी इससे ये सबक हासिल करना चाहिए कि जब इस तरह का बड़ा हादसा हो जाए तो वो लिबास का जायज़ा ना लें, उधर देखें क्या सूरत हाल है। यानी पैगंबर उस वक्त एक मनसब पर भी थे, पैगंबरी का मनसब तो खैर हर मनसब से बालातर है, लेकिन रियासत के हुक्मरान की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या तरीका इख्तियार किया। यानी क्या ये किया कि अगले दिन से ख्वातीन मस्जिद में नहीं आएंगी, अच्छा फलां फलां जगह पर चूँकि लाइटें नहीं लगी हुई तो इसलिए लोग अपनी लालटन ले कर निकलेंगे, ये तो नहीं किया ना। यानी सबसे पहले मुजरिम की तरफ आपने रुख किया और उसको सजा दी, बड़ी इबरतनाक सजा दी है। तो हुकूमत के मामलात को इधर से देखना चाहिए। लेकिन क्या रसूलुल्लाह सल्लम यही कर रहे थे सिर्फ? यानी सिर्फ ये इबरतनाक सजा ही आपने दी, उसके साथ लोगों की तालीम, तरबियत, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज़ें असल में इस मौके पर बयान करने की नहीं होती, वो पूरी रियासत और सोसाइटी और माशरत की तामीर का मामला है। उससे एक तहजीब भी पैदा होती है, उस तहजीब में ये चीज़ें भी सिखाने की होती हैं कि हमारे लिबास क्या होने चाहिए, हमारा रहन सहन क्या होना चाहिए, हमें किन एहतियातों को मलहूज रखना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में क्या देखना चाहिए, बड़ों के बारे में क्या देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें तहजीबी सतह पर बयान होती हैं, ये इस तनकीदी सतह पर बयान करने की चीज़ें नहीं होती। तो जब आप इनको इनकी सही जगह पर बयान करते हैं तो ये मौसर भी होती हैं। कौन अहमक ये कहेगा कि जो कुछ भी आपका मुआशरा उसकी रियायत मलहूज रखे बगैर आपको इकदाम कर दें? आम हालात में रखा ही जाता है, लेकिन अगर एक मोटवे है और आपने अमूमी तासर ये पैदा किया है कि उसमें लोग हिफाजत से जा सकते हैं तो फिर कोई खातून निकलेगी ना। तो इस मौके पर आपकी तवज्जुहात का मरकज़ ये होना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है, यानी रियासत से क्या गलती हुई है, वहाँ कानून में क्या खामी रह गई, मोटरवे का इंतज़ाम करने में क्या ख़राबी पैदा हुई, हमारे रिस्पांस में ये सूरत क्यों पैदा हो गई, एक खातून ने मदद मांगी तो वो क्यों बर वक्त नहीं पहुँच सकी। तो सारी तवज्जुहात का मरकज़ रियासत की सतह पर ये होना चाहिए। बाकी दानिश्वरों को, उलमा को, हर एक को अपनी कौम से खिताब करना चाहिए और ये बताना चाहिए। और इसमें पाबंदियाँ लगाने या कंडमनेशन का रवैया, ये कोई सही रवैया नहीं होता। असल में शऊर पैदा करना, यानी मेरे अंदर ख़ुद ये एहसास पैदा हो कि मुझे घर में होना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बाहर होना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये एक तहजीबी रवायत हमेशा बनती है, और तहजीबी रवायत की निगहदाश्त करना, उसके बारे में हसास होना, उससे मुतल्लक लोगों की तरबियत करना, और तरबियत का उसलूब इस तरह नहीं इख्तियार करना चाहिए कि आप कोई आसमानी मखलूक अलग से खड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ मज़हबी तबका अपनी अलग से एक शनाख्त पैदा हो खड़ा कर हो जाता है और उसके बाद कंडमनेशन के बयान जारी करना शुरू कर देता है। नहीं, इसको एक तहजीबी रवायती के तौर पर बयान भी होना चाहिए। जब आप शफकत के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपनी बेटियों से गुफ्तगू करते हैं, अपनी बहनों से गुफ्तगू करते हैं, आप मर्दों से गुफ्तगू करते हैं, बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, तो वो उनके दिल में उतरती है। लेकिन जिस वक्त ये रवैया इख्तियार किया जाता है और फिर इसमें बेहयाई और उरियानी इस तरह के अल्फाज जो हैं वो हम अपनी असल में पुरानी तहजीबी रवायत की रोशनी में बोल रहे होते हैं। अब बेहयाई है क्या, उरियानी है क्या, क्या एक ज़रा आस्तीनों पर उठ जाए तो बेहयाई शुरू हो जाती है? अगर किसी सोसाइटी के बीमार जहन का मामला यही हो गया है कि ज़रा किसी ने अपनी पिंडली से शलवार उठाई और उसके बाद आप पागल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि इलाज उन लोगों का करना चाहिए اور ہمارا رخ بھی اسی جانب ہونا چاہیے. تو یہ میرے نزدیک ایک سے جہتی لائے عمل ہے. یعنی ایک جانب آپ اعلیٰ تہذیبی روایات پیدا کریں, دوسری جانب حکومت, اس کے ادارے, یہ سب یہ کوشش کریں کہ جرم کے محرکات کا انالیسس ہوتا رہے اور اس کے خاتمے کے لیے پریونٹیو میئرز جس کو آپ کہتے ہیں وہ اختیار کیے جائیں. اور تیسری جگہ یہ ہے کہ پھر اگر جرم کا صدور ہو جائے تو اس میں سزا کیسے دی جائے اور کتنی دی جائے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے قرآن مجید میں, اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے.